भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता सूचियां तैयार की जाती हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27 अरब $50 करोड़ तक पहुंच गया है। जापान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 5वां प्रमुख देश है। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनायम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।